तत्र द्रव्येन्द्रिय स्वरूप प्रतिपत्त्यर्थमाह। अब उसमें दो प्रकार की इंद्रियां हैं, द्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय। द्रव्येन्द्रिय का स्वरूप जानने के लिए कहते हैं निवृत्ति उपकरणी द्रव्येन्द्रियम। निवृत्ति और उपकरण ये द्रव्येन्द्रिय है। 17वां सूत्र दूसरा अध्याय सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, निर्वर्त्यते इति निवृत्ति, निर्वृत्ति निर्वर्त्यते इति निर्वृत्ति। जो रचा जाए उसको निर्वृत्ति कहते हैं। केन निर्वर्त्यते, किसके द्वारा रचा जाए, कर्मणा, कर्म के द्वारा। आवाज शार्प होनी चाहिए। सा द्विविधा, वो दो प्रकार की है, बाह्याभ्यंतर भेदात, बाह्य और अभ्यंतर के भेद से। उत्सेदांगुल असंख्येय भाग प्रमितानाम शुद्धानाम आत्म प्रदेशानाम प्रतिनियत चक्षुरादि इंद्रिय संस्थानेन अवस्थितानाम वृत्ति राभ्यंतरा निवृत्ति। उत्सेदांगुल, घनांगुल और उत्सेदांगुल, सूच्य अंगुल, ऐसे अलग अलग प्रकार के अंगुल के प्रमाण हैं। तो ये उत्सेदांगुल जो है उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण, जो शुद्ध आत्मा के प्रदेश और प्रतिनियत अपने अपने निश्चित स्थान पर चक्षु आदि इंद्रियों के आकार रूप से अवस्थित उनकी जो वृत्ति है वो आभ्यंतरा निर्वृत्ति है, अंतरंग की रचना हो गई। तेषु आत्म प्रदेशेषु इंद्रिय व्यपदेश भाक्षु, वो जो आत्मा के प्रदेश हैं, इंद्रियों के नाम को प्राप्त हो गए हैं, उनमें यह प्रतिनियत संस्थान है, जो निश्चित एक संस्थान बना है, नाम कर्म उदया पादितावस्था विशेष, नाम कर्म के उदय से प्राप्त कराई हुई कोई अवस्था विशेष वाला पुद्गल प्रचय, पुद्गलों का समूह, सा बाह्य निर्वृत्ति। माने दो प्रकार से बन गई निर्वृत्ति यानी रचना, एक तो आत्म प्रदेशों में वैसा आकार बन जाता है और दूसरा पुद्गलों के परमाणुओं में स्कंधों में वैसा आकार होता है। तो आत्म प्रदेशों में जो आकृति बन गई है इंद्रियों की वो कहलाई अंतरंग निवृत्ति, और जो पुद्गलों के परमाणुओं में वैसा आकार बन गया है आँख वगैरह का तो वो बाह्य निवृत्ति है। ये निवृत्ति उपकार क्रियते तद उपकरणम, जिसके द्वारा निवृत्ति का उपकार किया जाता है वो उपकरण है, यानी जो रचना हुई है नाम कर्म से उसका जिससे उपकार होता है वो उपकरण है। पूर्ववत तदपि द्विविधम, पहले के समान वो भी दो प्रकार का है। तत्राभ्यंतरम कृष्ण शुक्ल मंडलम, उसमें जो अंदर आंखों के भीतर काला और सफेद गोलाकार है वो, और बाह्यम अक्षिपत्र पक्ष्म द्वयादि। अक्षिपत्र यानी आंखों के जो ऊपर के पलड़े हैं पलक, वो उसके पक्ष्म द्वयादि दोनों पलकें, वो बाह्य उपकरण हो गए। तो इनसे क्या होता है कि इंद्रियों का उपकार होता है, इंद्रियां सुरक्षित रहती है। एवं शेषेष्वपि इंद्रियेषु जेयम, इस प्रकार बाकी इंद्रियों में भी जानना। भावेन्द्रियम अच्छे, भावेन्द्रिय कही जाती है, लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग ये भावेन्द्रिय है। लंभनम लब्धि, लंभनम माने प्राप्त होना, लब्धि है। का पुनरस हो, वो क्या चीज है, तो बोले ज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम विशेष है, ज्ञानावरण कर्म का एक विशेष क्षयोपशम है, उसका नाम लब्धि होगी। यत सन्निधानाद आत्मा द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्तिम प्रति, जिसके सन्निधान से आत्मा द्रव्येन्द्रिय की रचना के प्रति व्याप्रियते, व्यापृत होता है, प्रवृत्त होता है। तन्निमित्त आत्मनः परिणाम उपयोग, वो है निमित्त जिसका, ऐसे आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं। तदुभे भावेन्द्रियम, ये दोनों भावेन्द्रिय है। इंद्रिय फलम उपयोग, इंद्रियों का फल उपयोग है। तस्य कथम इंद्रियत्वम, अब उपयोग को कैसे इंद्रिय कह दिया भावेन्द्रिय, तो कहते हैं कारण धर्मस्य कार्य दर्शनात्, क्योंकि कारण का जो धर्म होता है गुणधर्म वो कार्य में भी देखा जाता है। यथा जैसे घटाकार परिणतम विज्ञानम घटयति, घट के आकार में जो परिणत विज्ञान यानी अपना विशिष्ट ज्ञान है उसको भी घट बोलते हैं। स्मृति में कोई चीज होती है तो उसको भी बोलते हैं ना कि है, अभी मेरे दिमाग में है, भूला नहीं हूं, तो क्या है, उसकी याद है, लेकिन उसको बोल सकते हैं आप कि वो है। हाँ, स्वार्थस्य तत्र मुख्यत्वाच्च, अपना जो अर्थ यानी पदार्थ है उसकी उसमें मुख्यता होती है, इसलिए इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम इति, यह स्वार्थ है। इंद्र का जो चिन्ह, इंद्र यानी आत्मा, उसका जो चिन्ह इंद्रिय है वो स्वार्थ है। स उपयोगे मुख्य है, उपयोग में वो प्रमुख है, इसलिए उपयोग लक्षण जीव इति वचनात्, क्योंकि उपयोग जो है जीव का लक्षण है, ऐसा वचन है। अतः उपयोग सेन्द्रियत्व न्याय्यम, इसलिए उपयोग का इंद्रियपना न्याय यानी उचित है। उक्तानाम इंद्रियाणाम संज्ञानुपूर्वी प्रतिपादनार्थमाह, कही हुई जो इंद्रियां हैं उनकी संज्ञाएं और अनुपूर्वी यानी क्रम, उसका प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, स्पर्शन रसन ग्राण चक्षु श्रोत्राणी लोके इंद्रियाणाम पारतंत्र्य विवक्षा दृश्यते, लोक में इंद्रियों की पराधीन व्यवस्था या विवक्षा देखी जाती है। अनिन आक्षणा सुष्टु पश्यामि, मैं इस आँख से अच्छा देख लेता हूँ। अनिन करणिन सुष्टु श्रणोमि इति, इस कान से अच्छा सुन लेता हूँ। इस प्रकार पराधीनता आ गई ना। ततः पारतंत्र्यात् स्पर्शादीनां करणत्वम्, इसलिए पराधीन होने के कारण स्पर्शन आदि जो है वो करण है, साधन है, देखने का साधन आँख हो गई, सुनने का साधन कर्ण है, छूने का साधन स्पर्शन इंद्रिय है, तो इसलिए ये साधन बन गए, उपकरण हो गए। वीर्यांतराय मतिज्ञानावरण क्षयोपशमांगोपांग नाम लाभावष्टम्भाद आत्मना स्पृश्यते नेनेति स्पर्शनम्। वीर्यांतराय और मतिज्ञानावरण दो का क्षयोपशम होना चाहिए, साथ में अंगोपांग नाम कर्म का लाभ यानी उदय होना चाहिए। इनके अवष्टम्भ से अर्थात इनके आलंबन से आत्मा द्वारा, अनेन इस आत्मा द्वारा स्पृश्यते स्पर्श कर लिया जाता है कि कोई पदार्थ, इसलिए स्पर्शन उसका नाम है। रस्यते नेनेति रसनम्, रस ले लिया जाता है जिसके द्वारा वो रसन है। घ्रायते नेनेति घ्राणम्, जिसके द्वारा गंध ली जाती है वो घ्राण है। चक्षुरनेकार्थत्वात्, चक्षेर अनेकार्थत्वात्, ये चक्षुर धातु होती है एक, वो अनेकार्थ वाली होती है, इसलिए दर्शनार्थ विवक्षायाम चष्टे, इसलिए यहाँ पर दर्शन देखने की विवक्षा में चष्टे अर्थान पश्यति अनेन इति चक्षु, जो आँखों को देखता है अथवा जिसके द्वारा देखा जाता है या जिसके द्वारा जीव पदार्थों को देखता है वो चक्षु, चक्षु बन गया, प्रत्यय लगा करके उसको चक्षु बना दिया शब्द। श्रूयते नेति श्रोत्रम, जिसके द्वारा सुना जाता है वो श्रोत्र है। स्वातंत्र विवक्षा च दृश्यते, और इंद्रियों की स्वतंत्र विवक्षा भी देखी जाती है लोक में। इदम मे अक्षि सुष्टु पश्यति, ये मेरी आंख अच्छा देखती है। अयम मे कर्ण सुष्टु श्रुणोति, ये मेरा कान ठीक सुनता है। तत स्पर्शनादीनां कर्तरी निष्पत्ति, इसलिए स्पर्शन आदि का कर्ता में निष्पाद हो जाता है, निष्पत्ति हो जाती है। स्पृशतीति स्पर्शनम, जो छूता है वो स्पर्शन। रसतीति रसनम, जो स्वाद लेता है रसन। जिघ्रतीति घ्राणम, सूंघता है घ्राण। चष्टेति चक्षुषः, देखता है वो चक्षु। शृणोतीति श्रोत्रम, सुनता है वो श्रोत्र। एषां निर्देशक क्रम है, इनका निर्देश और क्रम, एक एक वृद्धि क्रम प्रज्ञापनार्थ, एक एक की वृद्धि के क्रम को बतलाने के लिए किया गया है। तेषां इंद्रियाणां विषय प्रदर्शनार्थमाह, इन इंद्रियों के विषय क्या है उसको प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थाः, स्पर्श रस गंध और वर्ण और शब्द, ये तत् तत् यानी उन इंद्रियों के अर्थाः यानी विषय हैं। द्रव्य पर्याय यो हो, द्रव्य और पर्यायों में प्राधान्य विवक्षायाम, प्रधानता की विवक्षा में, विवक्षा यानी बोलने की इच्छा या अपेक्षा। कर्म भाव साधनत्वम, कर्म भाव से साधनपना होता है, ये व्याकरण की बात बता रहे हैं। स्पर्शनादि शब्द, स्पर्शादि शब्दानाम वेदितव्यम, ये स्पर्शादिक शब्दों का लगा लेना इसमें, माने स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श को जानती है। अब स्पर्श को जानती है का मतलब किसी न किसी विषय हो के स्पर्श को जानती है, ऐसा लगा लेना। द्रव्य प्राधान्य विवक्षायाम कर्म निर्देश है, द्रव्य की प्रधानता का की विवक्षा होने पर कर्म का निर्देश होता है। स्पृश्यते इति स्पर्श, रस्यते इति रस, गंधते इति गंध, वर्ण्यते इति वर्ण, शब्दते इति शब्द, व्याकरण की बातें बता रहे हैं। पर्याय प्राधान्य विवक्षा है, पर्याय की प्रधानता की विवक्षा में क्या करोगे, भाव निर्देश है, भाव का निर्देश होगा, स्पर्शनम स्पर्श, रसन रस, गंधनम गंध, वर्णनम वंद वर्ण, शब्दनम शब्द इति, ऐसा क्रम इंद्रिय क्रमेण ही व्याख्यात है। इनका क्रम जो है वो इंद्रियों के क्रम से ही जानना, पिछले सूत्र में जो क्रम था वही क्रम यहाँ इसमें लगा लेना, जोड़ लेना। अत्रा यहाँ कोई कहता है यत्तावन मनो नवस्थानात् इंद्रियं न भवति इति प्रत्याख्यातम्। अब जो पहले बताया था कि मन जो है स्थिर नहीं रहता इसलिए वो इंद्रिय नहीं हो सकता, इस बात को निषेध कर दिया, इसका निषेध कर दिया था कि नहीं मन भी ईषत इंद्रिय है। तत्किम उपयोगस्य उपकारी उतने इति, क्या वो उपयोग के लिए उपकारी है अथवा नहीं है, तो उत्तर देते हैं तद उपकार्येव, तदप्य उपकार्येव, वो मन भी उपकारी ही है। तेन उस तेन बिना उसके बिना इंद्रियाणाम विशेष स्वप्रयोजन वृत्त्यभावात्, इंद्रियों का अपने विषयों में अपने प्रयोजन से होने वाली जो प्रवृत्ति है उसका अभाव हो जाएगा। किमस्य ईशाम सहकारित्वमात्रमेव, क्या इस मन का इन इंद्रियों के लिए सहकारी मात्रपना है, प्रयोजन वही उसका प्रयोजन है, उत अन्यदपि इत्यतः, या कोई दूसरा भी काम है मन का, सिर्फ इंद्रियों को सहयोग देना ही मन का काम है या और भी कोई काम करता है मन। तो आचार्य कहते हैं श्रुत मन इंद्रियस्य, श्रुत यानी श्रुत ज्ञान जो है वो मन का काम है। श्रुत ज्ञान विषयोर्थ श्रुतम, श्रुत ज्ञान का विषयभूत पदार्थ श्रुत कहलाता है। स विषयोन इंद्रियस्य, वो विषय अनिंद्रिय अर्थात मन का होता है। परिप्राप्त श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशमस्य आत्मनः, परिप्राप्त हुआ है श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम जिसको ऐसी आत्मा के, श्रुतार्थीन इंद्रियावलंबन ज्ञान प्रवृत्ति, श्रुत के विषयभूत पदार्थ में अनिंद्रिय के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। अथवा श्रुत ज्ञानम श्रुतम, अथवा श्रुत ज्ञान को श्रुत कहो, तद इंद्रिय तद अनिंद्रियस्य अर्थ प्रयोजन, वो मन का प्रयोजन है इति यावत, ऐसा इसका अर्थ लगा लो। स्वातंत्र साध्यमिदम, यहाँ श्रुत ज्ञान जो है सम्यक ज्ञान की बात चल रही है, एक इंद्रिय अधिक में भी रहता है श्रुत ज्ञान, लेकिन वो मिथ्या श्रुत ज्ञान होता है उसकी बात यहाँ नहीं। स्वातंत्र साध्यमिदम प्रयोजनम अनिंद्रियस्य, जिस स्वतंत्रता से सिद्ध करने योग्य मन का प्रयोजन है। उक्तानाम इंद्रियाणाम प्रतिनियत विषयाणाम स्वामित्व निर्देशे कर्तव्ये यत् प्रथमं गृहीतं स्पर्शनं तस्य तावत् स्वामित्वावधारणमार्था धारणार्थमाह। अब कही हुई जो इंद्रियां हैं जो प्रतिनियत विषय वाली हैं, एक इंद्रिय दूसरे के विषय को नहीं जानती, तो उनके स्वामित्व का निर्देश की जहां पर बात आती है तो उनका करना चाहिए निर्देश, तो उनमें सबसे पहले ग्रहण की हुई स्पर्शन इंद्रिय उसके स्वामी कौन है, अकेली स्पर्शन इंद्रिय के उसका निश्चय करने के लिए कहते हैं वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पति पर्यंत जो जीव होते हैं उनकी एक इंद्रिय है। एकम प्रथमम इत्यर्थ, एक माने पहला स्पर्शन, वो इसका अर्थ हो गया। किं तत् स्पर्शनम, तत्केषां, वो किनके होती है, पृथ्व्यादीनां वनस्पत्यंतानां वेदितव्यम, पृथ्वी को आदि लेकर वनस्पति पर्यंत एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। तस्योत्पत्ति कारणम उच्यते, स्पर्शन इंद्रिय की उत्पत्ति का कारण कहा जाता है। वीर्यांतराय स्पर्शन इंद्रिय आवरण क्षयोपशमे सति, वीर्यांतराय और स्पर्शन इंद्रिय आवरण का क्षयोपशम होने पर शेषेन्द्रिय सर्वघात स्पर्धक उदये सति, उदय च बाकी इंद्रियों के सर्वघात स्पर्ध, बाकी इंद्रिय संबंधी आवरणों के सर्वघात स्पर्धकों का उदय होने पर शरीर नाम लाभावष्टम्भे, शरीर नाम कर्म के लाभ माने उदय का अवष्टम आलंबन होने पर एकेंद्रीय जाति नाम कर्म उदय वशवर्तितायाम, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय की वशवर्तिता होने पर च सत्याम, ऐसा होने पर स्पर्शनम एकेंद्रियम आविर्भवति, एक स्पर्शन इंद्रिय प्रकट होती है। इतरीशाम इंद्रियाणाम स्वामित्व प्रदर्शनार्थमाह, बाकी इंद्रियों के स्वामित्व का प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादी नाम एकैक वृद्धानि, एकैकम इति वीप्सायाम द्वित्वम, एक एक ये वीप्सा माने बार बार दो बार कहा ना, ये इसलिए डबल लिखा है, एकैकेन वृद्धानि एकैक वृद्धानि, एक एक से बढ़ती जा रही है इसलिए ऐसा कथन है। कृमिवादिं कृत्वा, कृमि को आदि लेकर स्पर्शनाधिकारात, स्पर्शन का प्रकरण चल रहा था तो स्पर्शनम आदिम कृत्वा, पहले इंद्रिय तो स्पर्शन रहेगी, एक एक वृद्धानि एक एक को बढ़ाते जाना, इति अभिसंबंध क्रियते, ऐसा संबंध जोड़ लिया जाता है। आदि शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, आदि शब्द को सबके साथ में परिसमाप्यते, परिसमाप्त कर लेना, जोड़ लेना। क्रिम्य आदि नाम स्पर्शनम रसनाधिकम, कृमि आदि के स्पर्शन और रसना ऐसी दो इंद्रियां हैं। पिपीलिकादि नाम स्पर्शन रसने घ्राणाधिके, पिपीलिकादि में स्पर्शन रसना और घ्राण और अधिक कर लो। भ्रमरादि नाम स्पर्शन रसन घ्राणानि चक्षुर अधिकानी, भ्रमरादिक के स्पर्शन रसन घ्राण और चक्षु उसमें अधिक कर लेना। मनुष्यादि नाम दान्यव श्रोत्राधिकानी इति, मनुष्यादिक में वही इंद्रियां चार रहेंगी लेकिन श्रोत्र अधिक हो जाएगी। यथा संख्येन अभिसंबंधो व्याख्यात, इस प्रकार यथा संख्य क्रम से संख्या पूर्वक अभिसंबंध बतला दिया। तेषां निष्पत्ति ही, उनकी जो निष्पत्ति यानी रचना है, पूर्णता है, वो स्पर्शन उपपत्या स्पर्शन की संगति के साथ व्याख्याता कही जा चुकी है। उत्तर उत्तर सर्वघाती स्पर्धकोदय, आगे आगे के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा वहां उसकी अपेक्षा से। एवं एतेषु संसारेषु द्विभेदेषु, इस प्रकार इन संसारियों में दो प्रकार के संसारी हैं, उनमें इंद्रिय भेदात, इंद्रियों के भेद से थोड़ा और शार्प कर दो, बास खत्म कर दो। एवं एतेषु संसारेषु द्विभेदेषु, इस प्रकार इन संसारी जीवों में जो दो भेदों वाले हैं, इंद्रिय भेदात, इंद्रियों के भेद के कारण पंचविदेषु, पांच भेद हो जाते हैं संसारी जीवों के, ये पंच उन भेदों में ये पंचेंद्रिया जो पांच इंद्रियों वाले जीव हैं, तद भेदस्य अनुक्तस्य, उसके भेद को तो बताया नहीं आपने, तो इसलिए प्रतिपादनार्थमा हो, उसका प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र है। संजनिनः समनस्काः, सैनी जीव जो होते हैं मन वाले होते हैं, मनोव्याख्यातम, मन की व्याख्या हो चुकी है। सहतेन ये वर्तन्ते, उस मन के साथ जो वर्तते हैं, ते समनस्काः, वे समनस्क कहलाते। संजनिनः इति उच्यन्ते, वो समनस्क जीव क्या कहलाते हैं, संजनी यानी सैनी। पारिशेष्याद इतरे संसारिणः प्राणिनो असंजनिनः इति सिद्धम्, फिर पारिशेष न्याय लगा लो तो फिर इतर माने संजनी जीव के इतर यानी उसके छोड़कर दूसरे जो संसारी हैं वो प्राणी असैनी होते हैं, ये सिद्ध हो जाता है। ननुज, कोई शंका कर रहा है कि संजनी ने तनेनैव गतार्थत्वात् समनस्का इति विशेषणम् अनर्थकम्, संजनी इसी से सब अर्थ समझ में आ जाता है, तो समनस्क ऐसा विशेषण देने की क्या आवश्यकता है, वो तो व्यर्थ है। ये तो क्योंकि मनोव्यापारो, मन का जो व्यापार अर्थात मन का जो परिणमन है, वो हिताहित प्राप्ति परिहार और परीक्षा, क्या है मन का कार्य, क्या है, हित की प्राप्ति करना और अहित का परिहार यानी त्याग करना, और इसकी परीक्षा करना हित क्या है और अहित क्या है। संज्ञा भी सैवेति, और संज्ञा भी उसी का नाम है। नैतद युक्तम, नहीं, जो तुम्हारी शंका है वो उचित नहीं है। क्यों, संज्ञा शब्दार्थ व्यभिचारत, क्योंकि संज्ञा शब्द के अर्थ में दोष आता है, कई प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं संज्ञा के। संज्ञा नाम इति उच्यते, नाम को भी संज्ञा कहा जाता है। तद्वंत संज्ञा इति सर्वेषाम अति प्रसंग, अगर ऐसा कहो कि भाई नाम वाले जो जीव हैं वो सैनी हैं, तो फिर सभी जीवों के नाम हैं तो सारे जीव सैनी हो गए, तो ऐसा अति प्रसंग हो जाएगा। संज्ञा ज्ञानम इति चेत, अब संज्ञा का अर्थ ज्ञान भी होता है, ऐसा यदि मानेंगे तो फिर सर्वेषाम प्राणिनाम ज्ञानात्मकत्वाद अति प्रसंग, सारे प्राणियों के पास ज्ञान होता है इसलिए सारे सैनी हो जाएंगे, तो ये भी अति प्रसंग हो जाएगा। आहार आदि विषयाभिलाष संज्ञा इति चेत, फिर अगर कोई कहे कि आहार आदि विषयों की अभिलाषा का नाम संज्ञा है, चार संज्ञाएं होती है ना, ऐसा यदि कहो तो तुल्यम, एक ही बात है वो तो। तस्मात, इसलिए समनस्का इति उच्यते, इसलिए ये कहना पड़ता है कि नहीं, संज्ञी समनस्क जीव है, यानी मन वाले जीवों को ही यहाँ पर संज्ञी माना गया है। एवं च कृत्वा, ऐसा करके गर्भांडज मूर्छित सुषुप्त्याद्यवस्थासु हिताहित परीक्षा भावेपि, गर्भ अवस्था में, अंडज अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, सुषुप्त यानी गहरी निद्रा की अवस्था में, और आदि यानी और भी कभी नशे में हो या कौमा में हो या किसी भी अवस्था में, इन अवस्थाओं में हिताहित की परीक्षा नहीं कर पाता, लेकिन तू भी मन सन्निधानात, मन का सन्निधान होने के कारण संजनित्वम उपपन्नम भवति, संसैनीपना वहां पर उचित ही होता है। बेहोश हो जाने पर असैनी हो जाए और जागृत होने पर सैनी हो जाए, ऐसा नहीं, मन वाला है इसलिए वो बेहोश हो या कैसा भी हो सैनी है ऐसा। यदि हिताहित आदि विषय परिस्पंदः प्राणिनां मनः प्रणिधान पूर्वक। अगर हित और अहित आदि विषयों में जो परिस्पंद होता है प्राणियों का, वो मनः प्रणिधान पूर्वक मन के ध्यान पूर्वक होता है। अथ फिर अभिनव शरीर ग्रहण प्रत्यागूर्णस्य विशीर्ण पूर्व मूर्तेर निर्मनस्कस्य यत्कर्म तत्कुत इति उच्यते। बोले कि फिर जो नया शरीर ग्रहण करने के लिए प्रत्यागूर्ण है, निकला हुआ है, और विशीर्ण पूर्व मूर्ते छूट गया है पुराना शरीर जिसका, ऐसा कोई जीव है जिसके पास मन भी नहीं है, वो कैसे चला जाता है वहां तक जहां उसको अगले जन्म में पैदा होना है, तो उसका कौन सा कर्म होता है? तो बदलाते हैं, विग्रहगत कर्म योग। विग्रह गति यानी नए शरीर के लिए जो गति हो रही है जीव की, उसमें कर्म योग, कर्म का योग होता है। कैसा? विग्रह देह, विग्रह यानी शरीर, विग्रहार्था गतिर विग्रह गति, शरीर के लिए होने वाली गति विग्रह गति है। अथवा विरुद्धो ग्रहो विग्रहो व्याघात, अथवा विग्रह का दूसरा अर्थ होता है विरुद्ध ग्रह। विरुद्ध ग्रह का मतलब व्याघात, मोड़ा। कर्मादाने पी, कर्म के स्वीकार करने पर भी नोकर्म पुद्गलादान विरुद्ध इत्यर्थ है। कर्म ग्रहण करने पर भी नोकर्म पुद्गलों का आदान वहां पर नहीं होता कार्मण का योग के समय, आहार वर्गणाएं नहीं आ रही है, कार्मण वर्गणाएं और कर्म परमाणुओं का आश्रव हो रहा है विग्रह गति में। विग्रहीन गतिर विग्रह गति ही, विग्रह पूर्वक होने वाली गति विग्रह गति है। सर्व शरीर प्ररोहण बीजभूतम कार्मणम शरीरम, सभी शरीरों का जो प्ररोहण में बीजभूत सभी शरीरों को उगाने वाला बीज कार्मण शरीर, कर्म इति उचित, उसको ही कर्म कह दिया यहां पर। योगो, और योग क्या है? वांग मनस काय वर्गणा निमित्त आत्म प्रदेश परिस्पंदः, वचन मन और काय की वर्गणाओं का है निमित्त जिसमें, ऐसा आत्म प्रदेशों का परिस्पंद योग है। कर्मणा कृतो योग कर्मयोग, कर्मों द्वारा किया हुआ जो योग है वो कर्मयोग है। विग्रह गतो भवति इत्यर्थ, वो विग्रह गति में वो वाला योग होता है कर्मण का योग। तेन, इसलिए कर्मादान देशांतर संक्रमश्च भवति, उस कर्मण का योग के द्वारा कर्मों का आदान होता है आश्रव, और देशांतर संक्रम यानी स्थानांतरण भी हो जाता है। आहा, अब कोई कहता है जीव पुद्गलानाम गतिमास्कंदताम देशांतर संक्रम किम आकाश प्रदेश क्रम क्रमवृत्त्या भवति उत अविशेषेणेत्यतः, कि जीव और पुद्गलों का जो गति को प्राप्त होने वाले जीव पुद्गल हैं उनका देशांतर संक्रम अन्य स्थान पर जो संक्रम यानी जाना होता है, क्या वो आकाश के प्रदेशों के क्रम की प्रवृत्ति से, मतलब आकाश पंक्तियों से होता है अथवा कहीं से भी कहीं चले जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं अनुश्रेणी गति ही, अनुश्रेणी यानी आकाशों की जो पंक्ति और प्रदेशों की पंक्ति है उसकी श्रेणी के अनुरूप ही गमन होता है। लोक मध्यादारभ्य ऊर्ध्व मदस्तिर्यक च आकाश प्रदेशानाम क्रम सन्निविष्टानाम पंक्ति ही श्रेणी इति उच्यते। लोक के मध्य से प्रारंभ करके ऊपर नीचे और तिरछे जो आकाश प्रदेशों के क्रम सन्निविष्ट जो आकाश प्रदेश हैं उनकी पंक्ति को श्रेणी कहा जाता है। अनुशब्द से अनुपूर्वीण वृत्ति ही, अनुशब्द जो दिया है श्रेणी के पहले वो उस क्रम से प्रवृत्ति करने के लिए अनुशब्द दिया है। श्रेणिनानुपूर्वेणैव श्रेणिनानुपूर्वेण अनुश्रेणी इति, श्रेणी की अनुपूर्वी से उसको अनुश्रेणी ऐसा कहते हैं। जीवानाम पुद्गलांच गतिर भवति इत्यर्थ, जीव और पुद्गल दोनों की गति अनुश्रेणी गति हो जाती है। अनधिकृतानाम पुद्गलानाम कथम ग्रहणमिति चेत, अब प्रकरण चल रहा है जीव का और आपने पुद्गलों को कहां से ले लिया यहां पर? यदि ऐसा पूछते हो तो आचार्य कहते हैं गति ग्रहणात्, क्योंकि यहां गति की बात चली थी तो गति में दोनों बातें कह दी। यदि जीवानाम एव गतिरिष्टा स्यात्, यदि जीवों की गति इष्ट होती तो गति ग्रहणवान अर्थकम, तो फिर गति कहने की जरूरत ही नहीं थी, अधिकारात् तत्सिद्ध, वो प्रकरण ही चल रहा है जीवों की गति का। उत्तरत्र जीव ग्रहणाच्च पुद्गल संप्रत्यय, और आगे भी जीव को ग्रहण किया है इसलिए पुद्गल का संप्रत्यय यानी ज्ञान हो जाता है। आगे क्या लिखा है? जीवस्य, अगले सूत्र में। इसलिए यहाँ पर अनुश्रेणी गति में जीव और पुद्गल दोनों आ जाएंगे। अगर जीव को ही ले लेते यहाँ पर तो फिर आगे जीवस्य कहने की आवश्यकता नहीं है। ननु शंका है, चंद्रादीनाम ज्योतिषकाणाम मेरु प्रदक्षिणा काले विद्याधरादीनाम च विश्रेणी गतिर अपि दृश्यते। बोले कि चंद्र आदि जो ज्योतिष विमान है उनका मेरु की प्रदक्षिणा के काल में और विद्याधरों आदि का जो गमन होता है वो विश्रेणी गमन भी होता है, ऐसे गोल घूम रहे तो वो कहां पंक्ति रही। तत्र किमुच्यते अनुश्रेणी गति इति, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है अनुश्रेणी गति? तो इसका जवाब है काल देश नियमोत्र वेदितव्य। यहां पर काल और स्थान का नियम जानना चाहिए। तत्र उनमें काल नियम स्थावत, काल नियम कौन सा है? बोले जीवानाम मरण काले भवांतर संक्रम मुक्तानाम चोर्धो गमन काले अनुश्रेण्येव गति। भवांतर संक्रमो क्या लिखा है? संक्रम लिखा है, संक्रमम एक ही मात्रा है ना, होनी चाहिए कोई ना कोई विभक्ति चाहिए थी। तो उसमें तावत जीवानाम, जीवों का क्या होता है? मरण काले भवांतर संक्रम, मरण के समय अगले जन्म में संक्रमित होने पर। मुक्तानाम च ऊर्ध्वगमन काले, और मुक्त जीवों के ऊर्ध्वगमन काल में अनुश्रेण्यैव गति, अनुश्रेण्यैव गति, अनुश्रेणी ही गति होती है। देश नियमों पर ऊर्ध्व लोकाद अधोगति, और स्थान का नियम क्या है कि ऊपर ऊर्ध्वलोक से अधोगति हो रही है अथवा अधोलोकाद ऊर्ध्वगति, अधोलोक से ऊर्ध्वगति हो रही है, अथवा तिर्यक लोकाद अधोगतिर रूर्ध्वा वा, तिर्यक लोक से ऊपर या नीचे दोनों तरफ गति हो रही है। तत्रानुश्रेण्येव, उसमें अनुश्रेणी गति ही होगी। पुद्गलानां च या लोकांत प्रापिणी सा नियमाद अनुश्रेण्येव, और पुद्गलों की गति जो उसको लोकांत तक के पहुंचाने वाली है वो भी नियम से अनुश्रेणी है। इतरा गतिर भजनीय, और बाकी जो विद्याधरों की या चंद्रादिक विमानों की गति है वो भजनीय है, अनुश्रेणी भी हो सकती है और न भी हो, ऐसा है। पुनरपि गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह, फिर भी गति की और विशेष जानकारी के लिए कहते हैं अविग्रहा जीवस्य। अविग्रह के आगे विसर्ग है क्या? होना नहीं चाहिए, इसमें गलत छप गया। विग्रहो व्याघात कौटिल्य मित्यर्थ, विग्रह माने व्याघात मोड़ा, ये इसका अर्थ है। स यस्याम न विद्यते असौ अविग्रह गति, वो जिनमें नहीं पाई जाती है वह वह जिसमें नहीं पाई जाती है वो अविग्रह गति है। कस्य किसकी होती है? जीवस्य जीव की। कीदृशस्य मुक्तस्य, किस प्रकार के जीव की? मुक्त जीव की। कथं गम्यते मुक्तस्य इति, कैसे जाना कि मुक्त जीव की अविग्रह गति है? उत्तर सूत्र संसारिक ग्रहणात इह मुक्तस्य इति विज्ञायते, अगले सूत्र में संसारिण शब्द आया ना, तो उससे समझ लो यहां पर कि यहां पर मुक्त की बात चल रही है। देखो कहां से कहां मतलब संबंध जोड़ करके अर्थ निकाला जाता है। अभी तो अपन बिल्कुल एक लाइन पढ़ते हैं और फटाक से बिल्कुल फैसला देते हैं, जजमेंट। यहां पर आचार्य महाराज कितनी सावधानी से अर्थ निकाल रहे हैं। अगले सूत्र में संसारिक ग्रहण करने के कारण यह इस सूत्र में मुक्तस्य इति विज्ञायते, ये जान लिया जाता है। ननुश्च अनुश्रेणी गति इत्यनेनैव श्रेण्यंतर संक्रमाभावो व्याख्यात, अनुश्रेणी गति इसी सूत्र द्वारा श्रेण्यंतर में संक्रम का अभाव है ऐसा बतला दिया। नार्थो नहीं, इसलिए इस सूत्र से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध हो रहा है, व्यर्थ है। तो उसके लिए कहते हैं पूर्व सूत्र विश्रेणी गतिरपि क्वचित अस्ति इति ज्ञापनार्थम इदम वचनम, पिछले सूत्र में विश्रेणी गति भी कहीं कहीं होती है इस बात की जानकारी के लिए ये वचन है। ननु तत्रैव देशकाल नियम उक्त, बोले कि नहीं वहीं तुमने आपने देश और काल का नियम कह दिया था? न नहीं, अतस्तत् सिद्धे, यहां जो कथन आया था उससे उस सूत्र में देश और काल के नियम की सिद्धि हुई थी। अगर ये सूत्र नहीं होता तो देश काल का नियम वहां भी नहीं बन सकता था। यद्यसंगस्य आत्मनो प्रतिबंधेन गतिरालोकांत गतिरालोकांतादवधृत काला प्रतिज्ञायते सदेहस्य पुनर्गति किं प्रतिबंधिनी उत मुक्तानाम मुक्तात्मवत इति अतः। यदि असंग आत्मा माने शरीर रहित आत्मा के अप्रतिबंधेन कोई रोक टोक न होने के कारण गतिरालोकांतात लोक के अंत तक के गति होती है अवधृत काला, एक समय में एक अवधृत काल निश्चित काल वाली होती है, प्रतिज्ञायते ऐसा जान लिया जाता है। तो सदेहस्य पुनर्गति है, जो शरीर वाला जीव है उसकी गति क्या प्रतिबंधिनी उक्त, वो कहीं रुकने वाली होती है अथवा मुक्तात्मवत इतिहास, या फिर मुक्त आत्मा के समान बिना मोड़े के वो गति होती है अविग्रह? तो आचार्य कहते हैं विग्रह वतीच संसारिण प्राक चतुर्भ्यः, संसारी जीव की विग्रह गति भी होती है और च यानी सीधी गति भी हो सकती है, लेकिन प्राक चतुर्भ्य चार समय से पहले होगी। कालावधारणार्थम प्राक चतुर्भ्य इति उच्यते, काल का निश्चय करने के लिए प्राग चतुर्व्य ऐसा कहा जाता है। प्राग इति वचनम मर्यादार्थम, प्राग ये जो वचन है ये मर्यादा के लिए है। चतुर्थात समयात प्राग विग्रहवती गतिर्भवती न चतुर्थे इति, चौथे समय से पहले तक विग्रह गति होती है, उस चौथे समय में नहीं होती। कुत इति चेत, क्यों नहीं होती? यदि ऐसा पूछो तो आचार्य कहते हैं सर्वोत्कृष्ट विग्रह निमित्त निष्कुट क्षेत्र उत्पित्सु, सर्वोत्कृष्ट विग्रह के निमित्त से जो